श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28 और श्लोक संख्या 53। अध्याय का नाम है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। मेरे साथ दोहराएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तदहं वंदे परमानंद माधव। श्लोक दोहराएंगे मेरे पीछे। अपि स्मरसि च आत्मानं अविज्ञा सखं सखे। अपि स्मरसि च आत्मानं अविज्ञात सखं सखे। हित्वा मां पदम अनुच्छन् भाम भोगरतो गता। हित्वा मां पदम अदच्छिन् भाम भोगरतो गता। अपि स्मरसि च आत्मानं अविज्ञात सखं सखे। हित्वा मां पदम अन्विच्छम् भाम भोगरतो गता। अपि स्मरसि च आत्मानं अविज्ञात सखं सखे। हित्वा मां पदम अन्विच्छन् भाम भोगरतो गता। अपि स्मरसि च आत्मानं च गते। हित्वा मां पदम अन्विच्छन् भाम भोगरतो गता। अपि स्मरसि च आत्मानं अविज्ञात सखं सखे। हित्वा मां पदं विच्छन् भाम भोगरतो गता। अपि स्मरसि च आत्मानं अविज्ञात सखं सखे। हित्वा मां पदम अन्विच्छन् भाम भोगरतो गता। वैष्णवीस, अपि स्मरसि च आत्मानं अविज्ञात सखं सखे। हित्वा मां पदम अन्विच्छन् भाम भोगरतो गता। अपि स्मरसि च आत्मानं अविज्ञात सखं सखे। हित्वा मां पदम अन्विच्छन् भाम भोगरतो गता। अपि स्मरसि च आत्मानं अविज्ञा सखम सखे हित्वा माम पदम अन्विच्छन् भाम भोगरतो गता अपि स्मरसि। क्या तुम्हें स्मरण है च भी आत्मा नाम परमात्मा को अविज्ञात अज्ञात सखम मित्र को सखे हे मित्र हित्वा छोड़कर माम मुझको पदम पद स्थिति अनविच्छन चाहते हुए भाम भौतिक भोग सुख रत रता अनुरक्त गता हो गए। ब्राह्मण ने आगे कहा, हे मित्र, यद्यपि इस समय तुम मुझे तुरंत नहीं पहचान सकते हो, किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि भूतकाल में तुम मेरे अंतरंग मित्र थे? दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक जगत के भोक्ता का पद स्वीकार किया था। एक दफा मेरे साथ दोहराएंगे। ब्राह्मण ने आगे कहा, हे मित्र, यद्यपि इस समय तुम मुझे तुरंत नहीं पहचान सकते हो, किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि भूतकाल में तुम मेरे अंतरंग मित्र थे? दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक जगत के भोक्ता का पद स्वीकार किया था। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की तो तात्पर्य है, जैसा कि भगवद गीता 7.27 में कहा गया है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तपः। हे अर्जुन, हे शत्रुओं के विजेता, सभी जीव मोह में उत्पन्न होते हैं और इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व द्वारा अभिभूत होते हैं। इस तथ्य की यह व्याख्या है कि किस प्रकार से जीव इस भौतिक जगत में आ पड़ता है। आध्यात्मिक जगत में न द्वैत है न ही घृणा। भगवान अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अधिकाधिक आनंद उठाने के लिए वे विभिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। जैसा कि वराह पुराण में उल्लेख है कि वे विष्णु तत्व स्वांश रूप तथा अपनी तटस्थ शक्ति विभिन्नांश जीव में स्वयं विस्तार करते हैं। इस प्रकार से विस्तारित जीवों की संख्या अनंत है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश के कण सूर्य के असंख्य विस्तार हैं, जीव विभिन्नांश और भगवान की तटस्थ शक्ति है। जब जीव को भोग की इच्छा होती है तो वे द्वंद्व यानी द्वैत की चेतना विकसित करते हैं और भगवान की सेवा करने से घृणा करने लगते हैं। इस प्रकार जीव इस भौतिक जगत में आ पड़ते हैं। प्रेम विवर्त में कहा गया है, कृष्ण बहिर्मुख हय जीव, कृष्ण बहिर्मुख हय भोग वांछा करे, निकट स्थ माया तारे झपटिया धरे। जीव की सहज स्थिति यह है कि वह दिव्य प्रेम भाव से भगवान की सेवा करे, किंतु जब जीव श्री कृष्ण की नकल करना चाहता है या स्वयं कृष्ण बनना चाहता है तो वह भौतिक जगत में आ गिरता है। क्योंकि श्री कृष्ण परम पिता हैं, इसलिए जीवों के प्रति उनका स्नेह नित्य है। जब जीव भौतिक जगत में आ गिरता है तो परमेश्वर अपने श्वांश विस्तार यानी परमात्मा से जीव के साथ रहते हैं। इस प्रकार किसी न किसी दिन जीव भगवान के धाम वापस जा सकता है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से जीव भगवान की सेवा से च्युत होता है और इस जगत में भोक्ता के रूप में पद प्राप्त करता है। उससे भी ऊंचा पद प्राप्त करने की इच्छा से जीव उल्टे जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। वह अपना पद मनुष्य, देवता, बिल्ली, कुत्ता, वृक्ष इत्यादि के रूप में चुनता है। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में से शरीर ग्रहण करके अनेक प्रकार के सुख उपभोगों से अपने को संतुष्ट करता है, किंतु परमात्मा यह नहीं चाहता कि जीव यह सब करे। फलतः परमात्मा उससे भगवान की शरण में आने के लिए आदेश देता है। तब परमात्मा जीव का भार अपने ऊपर ले लेता है, किंतु जब तक जीव भौतिक इच्छाओं से अदूषित न हो तब तक वह परमेश्वर की शरण में नहीं जा सकता। भगवद गीता 5:29 में भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। साधु पुरुष मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम कारण, समस्त लोकों तथा देवताओं का स्वामी तथा जीवों का कल्याण करता हितैषी मानते हुए भौतिक यातनाओं से शांति प्राप्त करते हैं। परमेश्वर सबों का परम मित्र है, किंतु जब कोई सुखी रहने की अपनी योजना बना रहा हो और इस तरह प्रकृति के गुणों में स्वयं को उलझा रहा हो तो वह अपने परम मित्र के आदेश से लाभ नहीं उठा सकता है। जब सृष्टि होती है तो जीव अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार विविध रूप धारण करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी योनियां या जीव रूप एक साथ उत्पन्न होते हैं। डार्विन का यह सिद्धांत कि प्रारंभ में मनुष्य नहीं था अपितु वह अनेकानेक वर्षों में विकसित हुआ, मात्र एक मूर्खतापूर्ण कथन है। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि इस ब्रह्मांड का प्रथम प्राणी ब्रह्मा था। सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण उसने संसार भर में पाई जाने वाली समस्त योनियों की सृष्टि का कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। यहाँ श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त होता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैशंवाक्षं श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं हे सावधेयं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानमिताक्ष। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरुभिश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री वृंदावन धाम में प्रातःकालीन भगवत कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, चरण वंदन है। जितने भी मेरे वरिष्ठ सखा वरिष्ठ हमारे भक्तगण हैं, मेरे समकक्ष हैं और मुझसे आयु में कम हैं, विद्वत्ता में बड़े हो सकते हैं, उन सभी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और आपसे याचना करता हूँ कि इस प्रभुपाद के द्वारा दिए गए तात्पर्य को हम समझ सकें, आपस में चर्चा कर सकें। तो श्लोक तो बड़ा ही सुंदर है और प्रभुपाद ने भी इस श्लोक में अपना पूरा तात्पर्य, अपना पूरा सिद्धांत समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो यहाँ जैसा कि आप लोगों को विदित है कि पुरंजन अपना देह शांत हुआ, उसका अंत आया और अंतकाल में स्त्री का स्मरण किया और अगले जन्म में उसको स्त्री योनि की प्राप्ति हुई, जो हमारे इस आज के अध्याय का नाम है। तो अभी हम ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, कई दफ़ा चर्चा होती रही है कि किस तरीके से पुरंजन को स्त्री योनि प्राप्त हुई। अभी आज का जो विषय है ये है कि चूंकि स्त्री योनि प्राप्त होने के बाद उसका भाग्य उज्जवल हुआ। क्यों उज्जवल हुआ? वो राजा के घर में उसका जन्म हुआ, विदर्भी बनी और फिर बड़े अच्छे राजकुमार के साथ उसका विवाह हुआ, जो उच्च कोटि का भक्त था, बहुत ही उच्च कोटि का भक्त था, मलयध्वज। अब मलयध्वज के साथ उन्होंने जीवन यापन किया और जब मलयध्वज अपने राजपाट को छोड़ करके वन में जाने की तैयारी करी, तो ये जो पुरंजन जो स्त्री बनी है, जो उसकी पत्नी बनी है, वो उसके साथ हो ली और उसकी भरपूर सेवा करी। और सेवा सेवा करते करते पता ही नहीं लगा कब मलयध्वज का शरीर शांत हो गया। अब मलयध्वज का शरीर शांत हो गया और वो क्या करने लगी? वो विलाप करने लगी, विलाप करने लगी। और विलाप करने के बाद यहाँ जो ब्राह्मण प्रकट हुए और ब्राह्मण ने उनसे वार्तालाप शुरू किया, और जैसा कि कल के श्लोक में बताया गया था, ब्राह्मण ने इस प्रकार पूछा, तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो? यहाँ लेटा हुआ पुरुष कौन है? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस मृत शरीर के लिए विलाप कर रही हो। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूँ। तुम्हें स्मरण होगा कि पहले तुमने मुझसे कई बार परामर्श किया है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो ब्राह्मण वो और कोई नहीं है, स्वयं भगवान, स्वयं परमात्मा अपना वेश बदल करके ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। किसके सामने? विदर्भी के सामने, जो पुरंजन की पत्नी, मलयध्वज की पत्नी। तो क्यों भगवान प्रकट हो गए, है ना, ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए, क्यों प्रकट हो गए? भगवान चैत्य गुरु के रूप में सबके हृदय में रहते हैं और आदेश देते हैं। कभी कभी भगवान स्वप्न में भी आ जाते हैं, कभी कभी भगवान वेश बदल के आ जाते हैं भक्तों के सामने, और कभी कभी भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं, किसी भी रूप में भगवान आते हैं। तो यहाँ ब्राह्मण के रूप में आ गए, उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जो वैदर्भी थी उसने एक बहुत उच्च कोटि के भक्त की, जिसको प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु और शिष्य का संबंध, पति और यहाँ पत्नी का जो संबंध है, मलयध्वज का और वैदर्भी का संबंध गुरु और शिष्य का संबंध है। तो शिष्य ने क्या किया? अपने पूरे सामर्थ्य के अनुसार गुरु की सेवा की, और गुरु की सेवा करने से भगवान प्रकट हो गए। इसी प्रकार से जब पति उच्च कोटि के भक्तों, अगर पत्नी सेवा करती है तो भी भगवान प्रकट हो जाते हैं, चाहे वो चैत्य गुरु के रूप में, चाहे वो किसी वेश बदल कर, चाहे साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। अनेक प्रकार के उदाहरण हमको शास्त्रों में मिलते हैं, जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी आज का विषय है कि यहाँ पर कहा गया है अपिस्मरसी, है ना, शुरुआत कहां से होती है? अपि स्मरसि, क्या तुम्हें स्मरण है? कौन कह रहा है? ब्राह्मण कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में कौन है? परमात्मा। परमात्मा कह रहे हैं किसको? विदर्भी को। क्या तुम्हें स्मरण है? अपि स्मरसि च आत्मानम्, परमात्मा को, अविज्ञात सखम, अज्ञात मित्र को। फिर कहते हैं सखे, हे सखे। उसको क्या संबोधन किया भगवान ने? सखे, उसको मित्र बता रहे हैं भगवान, मित्र कह रहे हैं। क्या तुमको स्मरण है परमात्मा को, अज्ञात मित्र को, जिसे छोड़कर माम मुझको पदम, पद की स्थिति चाहते हुए, इस भौतिक जगत में पद की स्थिति को चाहने के कारण तुमने मेरे को छोड़ दिया था भूतकाल में, क्या तुम्हें याद है? अपि स्मरसि, और भौतिक भोग भोगने में अनुरक्त हो गए थे तुम, क्या तुम्हें याद है? तो बड़ा भगवान उनको स्मरण कराने की एक प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको स्मरण आ जाए। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति आती है, मुझसे ही ज्ञान प्राप्त होता है, और मुझसे ही विस्मृति आती है ना। स्मृति देने वाला भी मैं हूं, और ज्ञान देने वाला भी मैं हूं, और विस्मरण कराने वाला भी मैं हूं, है ना। सर्वस्य चाम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम ओहनम च। अब भगवान कह रहे हैं कि आपको स्मरण है। अब देखा जाए तो भगवान, आपने ही तो विस्मृति कराई है, आपने विस्मृति करा दी, और आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आपको स्मरण है, कैसे स्मरण हो सकता है? जब तक आप नहीं चाहेंगे मुझको, कैसे स्मरण हो सकता है? यही है जीव की कथा और जीव की व्यथा। भागवतम में कपिल देव अपनी माता जी को कहते हैं, बताते हैं एक श्लोक में, कहते हैं कि जीव जब मां के गर्भ में होता है तो उसकी स्थिति बताते हैं कि हमारी स्थिति कहां से कैसे शुरुआत होती है। अकल्पा अकल्पा स्वांग चेष्टायम शकुंता इव पंजरे, तत्र लब्धा स्मृतिम देवात कर्म जन्म शतोद्भवम। कहा गया है कि वह पिंजरे में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। जीव की स्थिति क्या होती है? बंद पक्षी के समान, पिंजरे में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को भी हिलाने डुलाने में असमर्थ रहता है। उसी समय अदृष्ट भगवान, है ना, अदृष्ट रूप से क्या करते हैं? अपनी प्रेरणा से उसको स्मरण शक्ति प्राप्त करा देते हैं जीव को। जब जीव मां के गर्भ में होता है उसको स्मरण शक्ति प्राप्त करा देते हैं, तब उसे, यदि वह बहुत भाग्यवान है तो पिछले 100 जन्मों का उसको अपने जन्म और कर्म याद आ जाते हैं, है ना। जन्म शतोद्भवम देवात कर्म जन्म शतोद्भवम। प्रभुपाद कहते हैं कि उनको 100 वर्षों के जन्म के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है, उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है? ये श्लोक का तात्पर्य है कि जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो उसकी स्थिति कैसे होती है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि हम किस स्थिति से होके गुजरे हैं जिसकी हमको विस्मृति हो गई, और अगर विस्मृति नहीं हुई होती तो हम इस संसार में रह नहीं पाते। वो विस्मृति किसके द्वारा हुई? वो विस्मृति भगवान के द्वारा हुई। कौन सी विस्मृति भगवान ने करवा दी, वो अभी हम इसको पढ़ते हैं। आप जरा ध्यान से सुनिए कि हम किस कौन सी यात्रा करके बाहर आए हैं, है ना। एक यात्रा जो माँ के गर्भ में जो हमने समय बिताया उसकी कैसी यात्रा करी थी, मैं संक्षेप में बताता हूं। जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्म अनुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्यकरण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है, 5 रात्रि में बुलबुले के रूप में हो जाता है। जीव जो है 5वें दिन एक बुलबुले के रूप में हो जाता है, 10 दिन में बेर के समान कुछ कठोर हो जाता है। जैसे बेर होता है 10 दिन में जीव वैसा कठोर हो जाता है थोड़ा। 1 मास में उसके सिर निकल आता है, 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाजन हो जाता है, 3 मास में नख नखून रोम अस्थि चरम स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं 3 मास में, 4 मास में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं, 5वें महीने में उसको भूख प्यास सताने लगती है, 6 मास में झिल्ली में लिपटकर वह दाहिने कोख में घूमने लगता है, उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहां के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे तीखे गरम नमकीन रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होती रहती है और वो पिंजड़े में बंद पक्षी के समान क्या होता है, हिलने डुलने में भी असमर्थ रहता है। उसी समय भगवान क्या करते हैं, जब ऐसी स्थिति हो जाती है भगवान उसको स्मरण शक्ति प्रदान कर देते हैं, जो आज का हमारा श्लोक है अपि स्मृति। क्या आपको स्मरण है, भगवान आपने मेरे को स्मरण तो करवाया था जब मैं मां के गर्भ में था। यहां भगवान कह रहे हैं कपिल देव कि तब उसको भगवान स्मरण करा देते हैं, 1 जन्म की नहीं, 2 जन्म की नहीं, पिछले 100 जन्मों तक की उसको याददाश्त आ जाती है, अपने जन्म और कर्म उसको याद आ जाते हैं। और फिर उस वक्त जीव क्या कहता है, उस वक्त जीव बोलता है, भगवान से बोलता है, क्या बोलता है, ये ने दशिम गति मसो दशमास्य ईश संग्रहिता पुरुदयन भवादृशेन स्वनेव तुष्यतु कत्कृतेन सदीननाथ को नाम तप प्रतिम विनांजलिमस्य कुर्यात। हे भगवान स्वामिन, आप बड़े दयालु हैं, आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दे दिया, ऐसा स्मरण करा दिया, 10 मास के जीव को आपने ऐसा स्मरण करा दिया, दीन बंधो इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो जाएं, है ना। जीव क्या कह रहा है, भगवान जो आपने मेरे ऊपर उपकार किया है इसी उपकार से आप प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के अलावा, आपको हाथ जोड़ने के सिवाय आपके इस उपकार का बदला कोई दे भी क्या सकता है, कोई नहीं दे सकता। जीव की जो स्थिति है क्या भगवान को दे सकता है ना। गजराज ने भी फिर भगवान को पुष्प अर्पण कर दिया था जब मगर के था, लेकिन यहां तो जीव की जो स्थिति बताई गई है ना, वो उससे भी ज्यादा भयानक है। तो वो कह रहा है कि क्या कर सकता हूं मैं ऐसी स्थिति में, आपने मेरे को जन्म याद करा दिए, मेरे कर्म याद करा दिए, अब हाथ जोड़ने के अलावा मैं कर क्या सकता हूं, मेरी स्थिति ऐसी है। और भगवान से प्रार्थना करता है कि किसी तरीके से मेरे को इस काल कोठरी से बाहर निकालो, है ना। और जैसे ही जीव गर्भ से बाहर आता है तुरंत विस्मृति। तो विस्मृति तो भगवान आपने कराई। हाँ, भगवान कहते हैं विस्मृति मैंने कराई, उसका भी कारण है। अगर विस्मृति नहीं कराता तो हर व्यक्ति यहां जड़ भरत हो जाता। जड़ भरत को विस्मृति नहीं हुई, अपने पूर्व जन्म का स्मरण रह आया, हिरण की योनि में थे। इसीलिए जब हिरण की योनि से भरत जड़ भरत बन गए तो उन्होंने फिर इस संसार में केवल भगवान के हरि नाम के अलावा कोई कार्य किया नहीं। अगर भगवान ये विस्मृति ना कराएं तो हर व्यक्ति जड़ भरत हो जाएगा, भगवान का ये संसार ये चलना बंद हो जाएगा। जब तक अज्ञान में हम नहीं होंगे तब तक इस संसार में हम क्रियाकलाप, भौतिक क्रियाकलाप कर नहीं सकते। जैसे जैसे व्यक्ति को भौतिक ज्ञान से दूर होता है, भगवान के ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैसे वैसे तो भगवान इसलिए कहते हैं ना कि मेरे भक्त जो है उनकी संख्या क्या होती है ना, सभी भक्त नहीं बन जाएंगे, सब भक्त बन जाएंगे तो यह संसार कैसे चलेगा। मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित यदति सिद्ध है, कोई एक हजारों में से एक प्राप्त करता है, सिद्धि प्राप्त करता है। तो जैसे जीव बाहर आता है तो उसको विस्मृति स्वाभाविक है, लेकिन भगवान ग्रंथों के रूप में, गुरु के रूप में अपने होने का एहसास कराते हैं। तो जैसे बताया गया है, माया मुक्त जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, माया मुक्त जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। अब भगवान ने हमारे लिए वेद दिए, पुराण दिए, उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जब तक हमें उन वेद और पुराणों की वाणी पे विश्वास नहीं होगा तब तक हम भगवान की इस संसारिक जो ये भगवान का जो माया का धाम है इससे छूटने का हम प्रयास नहीं कर सकते। जो विस्मृति हमको हो गई वो विस्मृति हम कैसे अपने आप को पीछे ले चलें, कौन हमको समझाएगा। तो ये भागवतम, ये भगवत गीता, ये भगवान के ग्रंथ हमको बताते हैं कि हमारी जन्म लेने से पहले हमारी स्थिति क्या थी। वही बात यहां भगवान कह रहे हैं, अपि स्मरसि, क्या तुम्हें स्मरण है, च आत्मानम अविज्ञात सखम सखे, हे मित्र तुम्हें मुझे तुरंत नहीं पहचान सकते हो, किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि भूतकाल में तुम मेरे अंतरंग मित्र थे। भगवान कह रहे हैं कि मेरे साथ तो थे तुम भूतकाल में, है ना, लेकिन अभी तुम भूल गए हो। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में अर्जुन को भी, वेदा हम समतीतानी वर्तमानी च अर्जुना भविष्यवाणी च भूतानी माम तू वेद न कश्चना, वेदा हम समतीतानी, मैं आपके भूतकाल को जानता हूं। भगवान कहते हैं आपके भूतकाल को मैं जानता हूं, वेदा हम समतीतानी वर्तमानी च अर्जुना, हे अर्जुन वर्तमान को भी मैं जानता हूं, भविष्यवाणी च भूतानी, और भविष्य को भी जानता हूं, सब जीवों को भी जानता हूं, लेकिन मेरे को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। लेकिन भगवान को जानने की भी एक विधि है, केवल भक्त्यामाम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। भक्ति के द्वारा ही हम अपनी स्थिति को पहचान सकते हैं। यहाँ प्रभुपाद ने अपने इस तात्पर्य में बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या की है कि इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद मोहे न भारता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा। हे अर्जुन, हे शत्रुओं के विजेता, सभी जीव मोह में उत्पन्न होते हैं। तो जब हमारे अंदर भगवान से विलग हो करके भोग भोगने की इच्छा होती है, तब जीव क्या होता है, इस संसार में आ गिरता है। लेकिन भगवान उस जीव के क्योंकि पिता हैं, इसलिए उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ते, ये स्वाभाविक है। इस संसार में भी अगर कोई पुत्र या पुत्री माता पिता से अलग होने की चेष्टा करता है, तो कम से कम उसके माता पिता उसके ऊपर निगरानी जरूर रखते हैं, है ना, निगरानी रखते हैं कि कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है। इसी प्रकार जब जीव जो विभिन्नांश है भगवान का, तो भगवान स्वांश परमात्मा के रूप में उसके साथ हो लेते हैं। चल तेरे को भोग भोगना है, चल भोग के देख ले, मैं तेरे साथ चलता हूं। तो भगवान स्वांश के रूप में उसके साथ हो लेते हैं और उसको समय समय पे चैत्य गुरु के रूप में उसको याद दिलाते रहते हैं कि भाई किस तरीके से, जब थक गए हो, जब भोग भोग के थक गए हो, जब तुम्हें यह समझ आ जाए कि इस भौतिक भोगों से जीव का कुछ होने वाला नहीं है, है ना। अभी भगवान की हमारे ऊपर इतनी कृपा है कि हमको जिस स्थिति से भगवान ने निकाल दिया, है ना, जिस कारागार से हम निकल के आए हैं, जिस यातना को हम भुगत के आए हैं, जिस माँ के गर्भ से हम होकर के आए हैं, जो विस्मृति हमको हो गई, उस यातनाओं की विस्मृति हो गई, और हम अपने आप को एक बड़े अभी इस वक्त एक आरामदायक स्थिति में अनुभव कर रहे हैं, लेकिन स्थिति वास्तव में हमारी आरामदायक है नहीं, लगता है हमारे को, क्योंकि भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान ने यह संसार की भी कुछ प्लानिंग है, ब्रह्मा जी की प्लानिंग है कि यह संसार कैसे चल सकता है, है ना। बताया गया है यहाँ आखिर में कि सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण उसने संसार भर में पाई जाने वाली समस्त योनियों की सृष्टि का कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। तो ब्रह्मा जी सर्वाधिक बुद्धिमान, तो उन्होंने कहा कि इस जीव को ऐसी स्थिति में डाला जाए कि इसको महसूस ही ना हो कि मैं एक दुखी अवस्था में हूं, है ना, दुखी अवस्था में उसको एक ऐसी एडवांस्ड, एक ऐसी नई साइंटिफिक जेल में डाला गया, जो जेल क्या है, चलती फिरती जेल, मोबाइल जेल, मोबाइल फोन हो गए मोबाइल जेल। भगवान ने उससे कहीं पहले, मोबाइल फोनों से कई करोड़ों अरबों साल पहले क्या बना दी, मोबाइल जेल बना दी, कि हम हैं भी जेल में लेकिन हमको महसूस भी नहीं होता कि हम जेल में हैं, चल फिर रहे हैं, कैसे हैं जेल में, लेकिन फिर अनुभूति होती है जीव को, उस जेल की फिर दोबारा अनुभूति होती है जब वो फेस करता है जरा और व्याधि को, जब उसके सामने बुढ़ापा आ जाता है, जब उसके सामने बीमारी आ जाती है, तब फिर वो सामने उसको दिखाई देता है कि मैं वास्तविकता से दूर रहा हूं, और वास्तव में ये संसार क्या है, ये दुखालयम है, अशाश्वतम है, है ना। जब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक है, जब तक हमारे इंद्रियों में बल है, तब तक हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि ये संसार भोगने लायक है, इसको भोगा जा सकता है। किस कारण से ऐसा सोचते हैं हम, विस्मृति के कारण, भगवान हमारे को विस्मृति करा देते हैं, ये स्थिति है हमारी। तो यहां पर कृष्ण बहिर्मुख है, भोग वांछा करे निकट स्थ माया तारे झपटिया तरे। जैसे ही जीव भोग वांछा करता है और माया जो है उसको झपट लेती है, कहती है आ जाओ अब तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते करते भगवान उनको क्या देते हैं, निर्देश देते रहते हैं। जैसे यहाँ पर ब्राह्मण के रूप में भगवान आ गए और कह रहे हैं कि क्या आप मुझको नहीं जानते, आप मुझको जानते हो। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, बड़ी सुंदर बात है भगवद गीता के 9वें श्लोक में, जिसको हमें और प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर उसमें छोटा सा तात्पर्य लिखा है जो मैं आपको बताता हूँ साथ में। यहाँ ये कहा गया है, भगवान कह रहे हैं गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृदा, है ना, प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही लक्ष्य है, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। देखिए यहां भी भगवान कह रहे हैं मैं अत्यंत प्रिय मित्र हूं। भगवान हमारे शाश्वत सखा होने का मतलब यह है कि भगवान ने मित्रता नहीं तोड़ी। मित्रता किसने तोड़ी है? मित्रता हमने तोड़ी है। भगवान कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारा शाश्वत मित्र था, शाश्वत मित्र हूं, शाश्वत मित्र रहूंगा, लेकिन हमने भगवान के साथ मित्रता तोड़ दी। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि मैं अत्यंत प्रिय मित्र हूं, मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय, अविनाश बीज भी हूं। तो यहां प्रभुपाद बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, जो श्लोक है गति भर्ता प्रभु साक्षी। गति का अर्थ है गंतव्य, लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है, यद्यपि लोग इसे जानते नहीं। प्रभुपाद कहते हैं जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथ भ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथा कथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण होती है। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तद अनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महालोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं, किंतु ये सारे लोक कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी हैं। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षतः कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, सीधा कृष्ण तक पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरणार्थ यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए। सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है, अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी है। हमारा घर, देश या लोक जहां पर हम रह रहे हैं सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करें। हम चाहे जहां भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव हैं, क्योंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण हमारे परम पिता हैं और उनसे बढ़कर न तो कोई मित्र हो सकता है न कोई शुभचिंतक हो सकता है। कृष्ण सृष्टि के आदि, उद्गम, प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल हैं। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण हैं। तो भगवान चैत्य गुरु के रूप में तो हम सबके हृदय में हैं और भगवान निर्देश देते हैं और भगवान प्रकट हो जाते हैं। अपने जो आधुनिक जो एडवांस, जो बहुत आगे बढ़े हुए भक्त हैं, जो भगवान के बहुत अंतरंग भक्त हैं, भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो उसमें भगवान बहुत समय नहीं, तकरीबन 300-350 साल पहले है ना, भगवान के भक्त हुए संत तुकाराम। संत तुकाराम को भगवान ने क्या भेजा, विमान भेज दिया वैकुंठ से, साक्षात विमान में बैठ के संत तुकाराम चले गए, है ना। ये 300-350 बरस पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और भगवान किसी भी रूप में किसी के साथ कैसा भी है ना व्यवहार करते हैं। महाप्रभु साक्षात भगवान प्रकट हुए 500-550 बरस पूर्व, और महाप्रभु से पूर्व 300 बरस पूर्व जयदेव गोस्वामी ना उनके लिए भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने उनकी पत्नी के हाथ का बनाया हुआ भोजन स्वीकार, गीत गोविंद लिखते हुए भगवान ने उसमें एक पद लिखा, देही पद पल्लवम उदरम, जिसको जयदेव गोस्वामी संकोच कर रहे थे लिखने से कि कैसे राधा रानी के चरणों में भगवान श्री कृष्ण अपना मस्तक टेक सकते हैं। भगवान क्या हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी, भगवान परम भगवान हैं, वो कैसे राधा रानी के चरणों में मस्तक टेक सकते हैं। इस गीत गोविंद में ये लिखते हुए उनकी लेखनी चल नहीं रही थी, उनको संकोच हो रहा था, भगवान जयदेव गोस्वामी का रूप लेकर के ही उनके घर में आ गए और उनके लेखन कार्य को पूरा किया और जयदेव गोस्वामी बन करके उनके यहाँ प्रसाद प्राप्त किया। है ना, भगवान कैसे आ जाते हैं। शिला प्रभुपाद को भी भगवान के साक्षात दर्शन हुए। प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद के जाने के उपरांत जब प्रभुपाद लीलामृत का लेखन कार्य बढ़ाया जा रहा था, तो सबसे जो जो प्रभुपाद के संपर्क में आए थे उनसे बात की जा रही थी, तो झांसी में जब प्रभुपाद थे सन 1954 में, तो प्रभुपाद के पहले डिसाइपल थे आचार्य प्रभाकर मिश्रा। तो मिश्रा जो हैं वो प्रभुपाद के साथ पहले डिसाइपल थे, और सन 1954 में वो गए थे दिल्ली जन्माष्टमी के समय, और जब लौट के आए रात को तकरीबन 1 बज गया था, तो उन्होंने देखा कि मंदिर में बहुत कीर्तन हो रहा है प्रभुपाद के द्वारा, अकेले हैं रात को 1 बजे और कीर्तन कर रहे हैं मृदंग बजा बजा के, और मंदिर में बहुत जोर से भगवान के उसमें बहुत जोर से मृदंग और कीर्तन, उनकी ऐसी उस वक्त चेतना थी, उस ऐसे भाव में थे कि देखने वाला समझ नहीं पाएगा कि ये प्रभुपाद को हो क्या गया, ये प्रभुपाद कैसे इतने भाव भावित हो गए हैं। तो उस वक्त तो प्रभाकर मिश्र नहीं कुछ उनसे पूछ पाए उनके ऐसे भाव को देख करके, और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि प्रभुपाद के गले में एक बहुत लंबी चरणों तक आती हुई माला थी कदम के फूलों की, और वो कदम की माला कोई साधारण माला नहीं थी, उस माला की ऐसी महक थी, इतनी महक थी कि सारा का सारा वातावरण बड़ा ही सुगंधित हो गया था। और प्रभुपाद उस माला गले में पड़ी हुई है, प्रभुपाद मृदंग बजा करके बहुत जोर से कीर्तन कर रहे हैं, और वहां बताया गया है कि जो माला जो कदम के फूल थे झांसी में मिलना वो बहुत मुश्किल है, झांसी में नहीं मिल सकते थे, और साधारणतः अगर मिल भी जाते तो केवल गोल्फ की जो बॉल होती है, गोल्फ की बॉल के आकार का ही यहाँ पर कदम का फूल मिल सकता है, लेकिन जो प्रभुपाद के गले में जो माला थी कदम के फूलों की, वो टेनिस के बॉल के आकार की माला थी। जैसे टेनिस की बॉल होती है इतने बड़े साइज की, उस एक एक फूल वैसा था वो प्रभुपाद के गले में थी। अगले दिन जब प्रभाकर मिश्र प्रभुपाद से मिले और उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद कल क्या था रात को, मैं समझ नहीं पाया क्या हो रहा था, तो प्रभुपाद उस वक्त बताते हैं कि आई वॉज फीलिंग सम लव फॉर कृष्णा, मैं कुछ प्रेम अनुभव कर रहा था और भगवान जो है मेरे सामने प्रकट हो गए और उन्होंने मेरे गले में ये माला डाल दी। जैसे ही मैंने भगवान के चरण छूने की प्रयास किया, भगवान के चरण छूने का प्रयास किया, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो भगवान किसी भी रूप में भक्तों के समक्ष आते हैं, चाहे चैत्य ग्रुप के रूप में हमें अंदर से निर्देश देते रहें, चाहे भगवान वेश बदल के आ जाएं, चाहे भगवान हमारे साक्षात सामने खड़े हुए हैं राधा श्याम सुंदर विग्रह के रूप में, गौनिताय के रूप में, कृष्ण बलराम के रूप में। गौरीदास पंडित है ना, महाप्रभु जब उनके पास गए, भगवान को रोकना चाह रहे थे, गौनिताय आप यहीं रुक जाओ, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, बड़ा विरह का भाव उत्पन्न हो रहा था। महाप्रभु ने कहा ठीक है हम यहां रुक जाते हैं, इनको जाने दो। तो गौरनिताय जो विग्रह के रूप में थे वो चलने लग गए, महाप्रभु स्थापित हो गए, यानी जो चल अचल हो गए और अचल चलने लग गए। गौरीदास पंडित कही क्या हो रहा है, किसको रोको किसको जाने दो। तो भगवान ने ये साबित किया कि मेरे में और मेरे विग्रह में कोई भेद नहीं है। भगवान कभी कैसे भी हम लोगों के समक्ष प्रकट होते हैं और हमको अपनी स्थिति को हमेशा अनुभव करते रहना चाहिए कि हमारी जो आज स्थिति है अभी अनुकूल है, हमारी स्थिति अभी प्रतिकूल नहीं है। अभी हम मंदिर आ पा रहे हैं, अभी हम भक्तों का संग कर पा रहे हैं, अभी हम कथा सुन पा रहे हैं, इस स्थिति को हम ना छोड़ें, क्योंकि ये स्थिति हमें कब काम में आएगी, जब प्रतिकूल स्थिति होगी तो हम जहां भी होंगे जिस स्थिति में होंगे हम स्थूल शरीर से नहीं तो सूक्ष्म शरीर से मंगला आरती अवश्य आते रहेंगे। तो यही है, भगवान अपने भक्तों को भूलते नहीं और भगवान क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा परम सखा हूं, लेकिन स्वीकार हमको भी करना है कि हाँ भगवान हम भूल गए थे लेकिन आप ही हमारे परम सखा हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम पुराण की, श्रील प्रभुपाद की।